पृष्ठ संख्या 17, अध्याय 2, 1890 से प्रथम विश्व युद्ध तक की दुनिया। 19वीं सदी के अंतिम दशक के आसपास से लेकर 1914 में प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने तक दुनिया में यूरोप का बोलबाला था, लेकिन यूरोपीय प्रभुत्व के अवसान के लक्षण पहले से ही प्रकट होने लगे थे। यूरोप के बाहर जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका दो बड़ी शक्तियों के रूप में उदित हो चुके थे। उपनिवेशों में राष्ट्रवादी आंदोलन उभरने लगे थे। उपनिवेशों को लेकर यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच चलने वाली स्पर्धा और यूरोपीय मामलों को लेकर विभिन्न संघर्षों से प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा, जो उस महाद्वीप के लिए विनाशकारी साबित हुआ। यूरोप के कई देशों में प्रबल आंदोलन छिड़ गए थे, जिनका उद्देश्य तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था में आमूल परिवर्तन लाना था। युद्ध की समाप्ति के पूर्व ही यूरोप के सबसे बड़े देश रूस में सफल क्रांति संपन्न हो चुकी थी। 1918 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त होने पर दुनिया का जो रूप सामने आया, वह पिछले 3 दशकों की दुनिया से काफी भिन्न था। यूरोप का प्रभुत्व और साम्राज्यवादी स्पर्धा। 19वीं सदी के 7वें दशक में, जब साम्राज्यवादी विस्तार का नया दौर आरंभ हुआ, तब से लेकर 1914 तक एशिया और अफ्रीका के लगभग सभी हिस्से तथा विश्व के कुछ अन्य भाग भी यूरोप के किसी न किसी साम्राज्यवादी देश के नियंत्रण में आ चुके थे। एशिया के भारत, मलाया वर्तमान मलेशिया, सिलोन आज का श्रीलंका और वर्मा वर्तमान म्यांमार ब्रिटिश शासन के अधीन थे। हिंद चीन, इंडो चाइना के देश फ्रांस के अधीन थे और इंडोनेशिया डच शासन के अधीन था। चीन पर किसी साम्राज्यवादी देश का प्रत्यक्ष शासन नहीं था, लेकिन उसे भी कई देशों ने आपस में अलग-अलग प्रभाव क्षेत्रों में बांट लिया था। उसकी स्थिति एक अंतर्राष्ट्रीय उपनिवेश जैसी हो गई थी। उसका विखंडन रुका तो 1899 से 1900 के बॉक्सर विद्रोह के कारण। इस विद्रोह को अंग्रेजों, जर्मनों, फ्रांसीसियों, जापानियों तथा अमेरिकियों की संयुक्त सेनाओं ने दबाया और वे सब बीजिंग पर काबिज हो गए। लेकिन इस तरह चीन का विखंडन रुक गया। 1907 में ईरान को 3 हिस्सों में बांट दिया गया। एक हिस्सा ब्रिटेन के प्रभाव क्षेत्र में आ गया, दूसरा रूसी प्रभाव क्षेत्र में और तीसरे के दरवाजे इन दोनों देशों के लिए खुले रहे। ब्रिटेन का थोड़ा बहुत नियंत्रण अफगानिस्तान पर भी था। मध्य एशिया रूसी साम्राज्य के अधीन चला गया था। एशिया का एकमात्र बड़ा देश जो स्वतंत्र था, वह जापान था। 1895 में उसने चीन को हराकर फार्मूसा पर कब्जा कर लिया था। बाद के वर्षों में उसने चीन पर अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार किया और मंचूरिया को लेकर छिड़ी एक लड़ाई में रूस को शिकस्त दी। 1910 ईस्वी में उसने कोरिया पर कब्जा कर लिया। इथियोपिया और लाइबेरिया को छोड़कर बाकी सारा अफ्रीका भी यूरोपीय ताकतों के बीच बटा हुआ था। 1870 में बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड द्वितीय ने कांगो पर न्यूनाधिक निजी संपत्ति के तौर पर कब्जा कर लिया था। यह देश बेल्जियम की सरकार को सन 1908 में सौंपा गया। ब्रिटेन के अफ्रीकी साम्राज्य में मिस्र, सूडान, इथियोपिया, युगांडा, ब्रिटिश पूर्व अफ्रीका, सियारा लियोन, गोल्ड कोस्ट, घाना, नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे। फ्रांसीसी लोग अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, सहारा, फ्रांसीसी कांगो, फ्रांसीसी गिनी, सीनेगल, दहोमी, मेडागास्कर पर काबिज हो गए थे। जर्मनी ने जर्मन पूर्व अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, केमरून और टोगोलैंड पर अपना अधिकार जमा लिया था। इटली के अफ्रीकी प्रदेशों में लीबिया और सोमालीलैंड शामिल थे। पुर्तगाल के कब्जे में अंगोला, मोजाम्बिक और पुर्तगाली गिनी थे। रियो दा ओरो तथा स्पेनी गिनी पर स्पेन का अधिकार था। इथियोपिया विजय की महत्वाकांक्षा से इटली को 1896 में मुंह मोड़ना पड़ा, जब अडोवा की प्रसिद्ध लड़ाई में इथियोपियाई सेना के हाथों उसे करारी शिकस्त करनी पड़ी। ब्रिटिश साम्राज्य शासित लोगों की संख्या तथा शासित क्षेत्रों के फैलाव की दृष्टि से सबसे बड़ा था। कहते थे, ब्रिटिश साम्राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता। इस समय ब्रिटेन की आबादी लगभग 4.5 करोड़ थी, लेकिन उसका औपनिवेशिक साम्राज्य 2.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था और इस क्षेत्र की आबादी लगभग 40 करोड़ थी। प्रायः 3.9 करोड़ आबादी वाला क्षेत्र फ्रांस 5 करोड़ से अधिक आबादी वाले 1 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर शासन करता था। यूरोप का विश्व का केवल राजनीतिक ही नहीं वरन आर्थिक प्रभुत्व भी था। ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस इन 3 यूरोपीय देशों का दुनिया के लगभग 45% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण था। विश्व व्यापार या बाजार से जितने औद्योगिक उत्पादनों की खपत होनी थी, उसका प्रायः 60% इन्हीं देशों का होता था। एशिया और अफ्रीका की साम्राज्यवादी विजय के साथ साथ यूरोप की साम्राज्यवादी शक्तियों के बीच तीव्र स्पर्धा और संघर्ष भी चलते रहते थे, लेकिन सामान्यतः अधिकांश विवादों का निपटारा यूरोप के सम्मेलन कक्षों में हो जाता था और युद्ध टल जाते थे। यूरोपीय शक्तियां अपने परस्पर विरोधी दावों का निपटारा आपसी लेन देन के आधार पर कर लेती थी। उदाहरण के लिए, दावों प्रति दावों के एक ऐसे दौर के बाद जिसमें ब्रिटेन और फ्रांस के बीच लड़ाई की नौबत आ गई थी, 1904 में दोनों के बीच एक गुप्त समझौता हुआ जिसके अनुसार ब्रिटेन को मिस्र के मामले में खुली छूट दे दी गई और बदले में मोरक्को फ्रांस को दे देने का फैसला हुआ। जब इस बात की भनक जर्मनी को लगी तो उसने फ्रांस को मोरक्को पर से अपना दावा वापस लेने को कहा। इसके पश्चात एक के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय संकट उपस्थित होते गए और यूरोप युद्ध की कतार तक पहुंच गया। आखिर मोरक्को के मसले का निपटारा 1911 में हुआ। फ्रांस जर्मनी की फ्रांसीसी कांगो का एक हिस्सा लेने पर राजी हो गया और बदले में जर्मनी ने उसे सूचित किया कि जर्मनी की ओर से उसे मोरक्को में जो चाहे करने की छूट है। ना ये संकट खड़े करने में और ना इनका समाधान ढूंढने में ही फ्रांसीसी कांगो या मोरक्को के लोगों की इच्छा को कोई महत्व दिया गया, जबकि उन्हीं के देशों को लेकर सौदेबाजी की जा रही थी। उपनिवेशों को लेकर छिड़ने वाले अधिकांश विवादों का निपटारा करने वाले इन तथाकथित सज्जनोचित समझौते के बावजूद यूरोपीय राज्यों का सैन्यकरण बढ़ती ही जा रहा था। हर देश दूसरे देश से डरता था और उसे शंका की दृष्टि से देखता था। फलतः वह अपनी सैनिक तथा नौसैनिक शक्ति बढ़ाने की फिक्र में लगा रहता था। हर देश की थल सेना और नौसेना का आकार बढ़ता चला जा रहा था। अधिकांश यूरोपीय देशों ने अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण लागू कर दिया था। यूरोप धीरे धीरे एक सैनिक शिविर में परिणित होता जा रहा था। कहने की जरूरत नहीं कि हर देश दावा करता था कि उसकी सैनिक शक्ति की वृद्धि का उद्देश्य मात्र प्रतिरक्षात्मक है, जबकि दूसरों का आक्रामक है। जर्मनी अपनी नौसेना का विस्तार करने लगा तो ब्रिटेन ने उसका विरोध करते हुए कहा कि इतनी शक्तिशाली थल सेना के रहते नौसेना का विस्तार उसके लिए बिल्कुल गैर जरूरी है। जर्मन सम्राट द्वितीय कैसर विलियम ने घोषणा की, जर्मन बेड़े का निर्माण किसी के खिलाफ नहीं किया जा रहा है, इंग्लैंड के खिलाफ तो नहीं ही, इसका निर्माण हमारी जरूरतों को देखते हुए किया जा रहा है। मैं फ्रांस और रूस से और इंग्लैंड से भी स्वयं को सुरक्षित करना चाहता हूँ और मैं काले लोगों के खिलाफ पूरे मन से गोरों के पक्ष में हूँ। उधर ब्रिटेन अपनी नौसैनिक श्रेष्ठता कायम रखने को कटिबद्ध था। वह इस श्रेष्ठता का उपभोग पिछले प्रायः 300 वर्षों से करता आ रहा था और अपने साम्राज्य तथा वाणिज्य व्यवसाय की रक्षा के लिए एवं स्वयं को सुरक्षा का भाव देने के लिए वह इसमें किसी तरह की कमी करने को तैयार नहीं था। जिस सरगर्मी से विभिन्न यूरोपीय राज्यों की सैनिक शक्ति में वृद्धि की जा रही थी और जिस लगन से युद्ध की तैयारियां हो रही थी, उससे लगने लगा था कि लड़ाई अवश्यम्भावी है। सच तो यह है कि तब युद्ध को एक सामान्य कुदरती बात माना जाता था, बल्कि एक श्रेष्ठ गुण की तरह उसका वखान भी किया जाता था। युद्ध की तैयारियों के साथ साथ युद्ध का प्रचार भी चलता रहता था और कुछ राजनीतिज्ञ तथा दार्शनिक लोग युद्ध को सृष्टि का एक दैवी नियम, प्रगति की शर्त मानते थे। जब हम यूरोप की आर्थिक तथा सैनिक शक्ति की बात करते हैं, तो यह याद रखना चाहिए कि उस महाद्वीप के सभी देश उसमें भागीदार नहीं थे। 1914 में जब लड़ाई शुरू हुई, उस समय यूरोप में कोई 25 छोटे बड़े देश थे। ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस इनमें सबसे अधिक औद्योगिकीकृत था, लेकिन बाकी के देशों में से अधिकांश, जैसे आइबेरियाई प्रायद्वीप में स्पेन और पुर्तगाल, अल्बानिया, सर्बिया और बुल्गारिया जैसे बालकन राज्य तथा ग्रीस, यूनान और पूर्वी यूरोप के देश मुख्य रूप से प्रौद्योगिक प्री इंडस्ट्रियल अवस्था में थे। यद्यपि इनमें से कुछ ने जहाँ तहाँ अपने उपनिवेश स्थापित कर लिए थे, यूरोप का सबसे बड़ी आबादी वाला देश रूस भी, जिसका अपना एक विशाल साम्राज्य था, प्रधानतः कृषकों का देश था, वहाँ औद्योगिकीकरण अभी आरंभ ही हुआ था और वह भी मुख्य रूप से दूसरे देशों के निवेशों के बल पर। इसके अलावा ये सभी राज्य राष्ट्रीयता के सिद्धांत के अनुसार गठित नहीं थे। एस्टोनिया, लात्विया और लिथुआनिया के बाल्टिक राज्य तथा फिनलैंड रूसी साम्राज्य के अंग थे। राज्य के रूप में पोलैंड का कोई अस्तित्व ही नहीं था। उसका एक हिस्सा रूस के कब्जे में था, दूसरा ऑस्ट्रो हंगेरियाई ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य का अंग था और तीसरा जर्मनी में शामिल था। चेको, स्लोवाकिया और इसी तरह अस्लाव जाति की आबादी वाले अनेक इलाके, जो बाद में कुछ समय पहले तक यूगोस्लाविया का अंग थे, भी ऑस्ट्रो हंगेरियाई साम्राज्य के हिस्से थे। आयरलैंड सदियों से ब्रिटेन का उपनिवेश बना हुआ था। इन देशों की राज्य व्यवस्थाओं में भी अंतर था। इनमें से कुछ गणतंत्र थे, हालांकि सभी गणतंत्र लोकतांत्रिक नहीं थे। कुछ में औपनिवेशिक संवैधानिक राजतंत्र कायम था। संवैधानिक राजतंत्रों में भी सभी राजाओं के अधिकार समान नहीं थे। बाकी के राज्य कुलीन तंत्र के अधीन थे।